नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार सातवीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले 11 राज्य के निगमायुक्तों और चयनित चुनाव अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चूरू में पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ताइवान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार सातवीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% पर रहने की संभावना है। पहली तिमाही में इसके 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9% तथा तीसरी और चौथी तिमाही में 7% पर रहने का अनुमान है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.5% पर रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 के 7.8% की तुलना में मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी आई है, लेकिन अब भी यह सरकार के 4% के लक्ष्य से अधिक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि 29 मार्च 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645.60 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पिछले 3 वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय रुपये में सबसे कम उतार चढ़ाव रहा। इस दौरान विश्व की प्रमुख मुद्राओं में रुपया सर्वाधिक स्थिर रहा। पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले 11 राज्य के निगमायुक्तों और चयनित चुनाव अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु कर रहे हैं। बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श होगा। देश के कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम मतदान की समस्या के समाधान के लिए लक्षित और विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की जाएगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ और कानपुर के निगम आयुक्त तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों के चुनाव अधिकारी विचार विमर्श में शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के मुद्दे को कम मतदान प्रतिशत का कारण बताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रतिशत 67.40% के राष्ट्रीय औसत से कम रहा था। जिन 50 संसदीय सीटों में सबसे कम मतदान दर्ज हुआ उनमें 17 महानगरों या बड़े शहरों के थे। यह आंकड़ा शहरी क्षेत्र में मतदान के प्रति उदासीनता दर्शाता है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति तैयार करने के लिए कम मतदान वाले 9 राज्यों के 50 से अधिक ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की भी पहचान की गई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य भागों के लिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होंगे। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 और मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5 सीटें, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार सोमवार तक नाम वापस ले सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में लोकसभा चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चूरू में पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंधन किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जनसभा में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कल पुष्प कर जाएंगे, वहां वे नागौर और अजमेर संसदीय सीटों के पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव जितेंद्र गोथवाल ने कहा कि पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा को विजय संकल्प सभा नाम दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परीक्षा आकलन और मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन किया है। इस नई पहल में सक्षमता आधारित प्रश्न अधिक होंगे, जबकि अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न कम संख्या में होंगे। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न, स्थिति आधारित प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के प्रश्न 40 से बढ़ाकर 50% कर दिए गए हैं। दूसरी ओर लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर प्रश्नों सहित अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न 2024-25 सत्र की परीक्षाओं में 40% से घटाकर 30% कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों में टोल फ्री मानसिक व्यवस्थाएं हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता लाने का निर्देश दिया है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सराहनीय काम कर रहा है और लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा है। टेलीमानस हेल्पलाइन हर दिन 2400 घंटे निशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इसका शुभारंभ किया था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा आज नई दिल्ली में जारी घोषणा पत्र में प्रतिदिन 400 रूपये की न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 1,00,000 रूपये, केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना के वादे शामिल है। कांग्रेस ने अगले दशक में 23 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार लाकर गरीबी समाप्त करने का भी वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र पंच न्याय यानी न्याय के 5 स्तंभों पर आधारित है। यह स्तंभ है युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर और आबादी प्रतिशत के अनुरूप अवसर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्म निरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में डाला गया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सांसद मंगूथा रेड्डी को केजरीवाल के खिलाफ गलत बयान देने के लिए कहा गया था और जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उनके बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि लगातार पूछताछ के बाद राघव रेड्डी अपने बयान से पलट गए और आप नेताओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले में लगातार भ्रामक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को जमानत मिल जाने से मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल किया कि अगर शराब नीति सही थी तो दिल्ली सरकार द्वारा उसे क्यों बदला गया। भारत और बांग्लादेश के बीच महादीपुर सोना मस्जिद बंदरगाह से होने वाला व्यापार ईद और पोएला बैशाख को देखते हुए 8 अप्रैल से 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगा। पोएला बैशाख बंगाली पंचांग का पहला दिन है जो बांग्लादेश का आधिकारिक कैलेंडर भी है। इस दौरान बंदरगाह से यात्रियों की आवाजाही सामान्य रहेगी। ताइवान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में आए भूकंप से सर्वाधिक नुकसान पर्वतीय हुलियन क्षेत्र और राजधानी ताइपे में हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।